यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभु पद जय प्रभु पद जय प्रभु पद जय प्रभु पद हरि बोल जय गुरु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुवार परम हंस आचार्य स्तोत्र सत्य चरवतुल साई प्रभुपाद महाराज की। इसकोन फाउंडर आचार्य भई चुके साई प्रभुपाद महाराज की। जय नित्यल्ला प्रश्न भक्ति सिद्धांत श्री गोस्वामी महा श्री प्रभुपाद की। गुरु परंपरा की शरण गोस्वामी महाराज की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्त की। अनंत कोटि वैष्णविंद की। सामवेदा भक्तविंद की। श्री गंगा में यमुना मैया की। भक्ति तुलसी महारण की। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधे कुंड श्री गिरी गोवर्धन की। हरिराम संकीर्तन की। जय गो प्रेमानंदे हरि। ऑल गो श्री असेंबल दिवस। ऑल गो श्री असेंबल दिवस। ऑल गो श्री असेंबल दिवस। ऑल गो ऑल ऑल गो श्री गुरु गौरांग। जय गो प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। चैतन्य चरितामृत हर सोमवार के दिन बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। चैतन्य चरितामृत के बारे में बताएंगे। इसमें आदि लीला अध्याय दो श्लोक संख्या 18। आत्मांतर्गामी यारे योग शास्त्रे कई से गोविंद धैरन विभूति है। आत्मांतर्यामी हरि 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 योग शास्त्रे कई से गोविंद धैरन विभूति है। आत्मांतर्गामी हरि यो हरि हरि योग शास्त्रे कई से गोविंद धैरन विभूति है। अनुवाद एंड तात्पर्य वाशील प्रभुपाद जी। जिन्हें योग शास्त्रों में अंतर्यामी परमात्मा कहकर वर्णित किया जाता है वे भी गोविंद के निजी विस्तार के अंश है। अंतर्यामी परमात्मा यानी शिवरूप साई विष्णु सबके हृदय में बैठे हुए हैं। सब जीवात्मा के हृदय में हमेशा के लिए। भाव तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं पूर्ण भूषण भगवान स्वभाव से प्रसन्न चित्त है। उनके आमोद प्रमोद या उनकी लीला पूर्णतया दिव्य है। वे अस्तित्व के चतुर्थ आयाम में रहते हैं क्योंकि यद्यपि भौतिक जगत लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई से प्रतिबंधित रहता है किंतु भगवान अपने शरीर रूप तथा अस्तित्व में पूर्णतया असीम होते हैं। वे भौतिक जगत के भीतर के किसी भी व्यापार से स्वयं जुड़े हुए नहीं होते हैं। भौतिक जगत उनके पुरुष अवतारों के विस्तारों से सुजित होता है। जो समग्र भौतिक शक्ति तथा सारे भद्र जीवों का मार्गदर्शन करते हैं पुरुष के तीन विस्तारों को समझकर जीव भौतिक जगत के केवल 24 तत्वों के ज्ञान की अवस्था को पार कर सकता है। महाविष्णु के विस्तारों में से एक शिरोडक्षाय विष्णु है जो प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा है। समस्त जीवों के परमात्मा अथवा द्वितीय पुरुष के रूप में वे गर्भक्षय विष्णु कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के सृष्टा या आदि कारण अथवा प्रथम पुरुष जो कारण सागर में शयन करते हैं वे महाविष्णु कहलाते हैं।
ये तीनों पुरुष भौतिक जगत के व्यापारों का निदेशन करते हैं। प्रामाणिक शास्त्र निर्देश कर देते हैं कि हर व्यक्तिगत जीव परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करे। निसंदेह योग की ऐसी विधि है जिससे परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले पुरुष से संबंध स्थापित करके भौतिक तत्वों के प्रभाव का अतिक्रमण किया जा सकता है। जिस किसी ने सृजन की प्रक्रिया की जटिलताओं का भलीभांति अध्ययन किया है वह बड़ी सरलता से जान सकता है कि परमात्मा परम पुरुष श्री कृष्ण के अंश है। ओमज्ञानिमिनान्द्रस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविशं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं करामहं धनाडि सवर्णिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतभृगवलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं साधकसभरान् सकलललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललल नमस्ते तब तक कांचन गौरांगी से राधे वृंदावनेश्वरी उषवानु सुदेव स्वामी हरिभ्य वाछवेधरुभ्य कृपा सिंधुभ्य वच पटिदनाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चैतामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ श्लोक में कहा गया है कि अंतरयामी परमात्मा का वर्णन है, कहते हैं कि गोविंद के मतलब कृष्ण के निजी विस्तार के अंश है, ये पहले समझ लेते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं कि प्रत्येक जीव परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करे। जिस किसी ने सृजन की प्रक्रिया की चरित्र को बड़ी बड़ी अध्ययन किया, मतलब भौतिक सृजन के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक सृजन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे चैतन्य चरण की बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का पहला अवतार बलराम आप सब जानते हैं, बलदेव पहला आविर्भाव, उनसे फिर संकर्षण, संकर्षण ने फिर चार रूप में विभाजित किया, वासुदेव नारायण प्रद्युमन अनिरुद्ध नारायण, से फिर सबसे पहले कारणोत्साह विष्णु। कारणोत्साह विष्णु के असंख्य रूप कुमों से रूप कुपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई। एक एक ब्रह्मांड में 14 लोक था, भू भुव स्व जन तप मनोलोक जनोलोक तपोलोक अतल वितल सुतल धरातल महातल असातल पाताल, ये 14 लोक वाले अनेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति कांतसाय विष्णु के रोम कुपों से हुई है। कांतसाय विष्णु भी भगवान के अंश है। भगवान कुछ करते नहीं, कहा न तो अच्छे कार्य कारण से विद्यते न तो समस्या तो अभी अधिक से दस्यते प्राश शक्ति विदेश सब एक ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की सब शक्तियाँ ही काम, भगवान का अंश, भगवान अंश ही है सबके, सब अवतार के सहाय शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, ऐसे ही चैतन्य महापुरुष सब अवतार के सहाय शिरोमणि कहा गया है। कारणोत्साह विष्णु से असंख्य रोम को ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यह कारण उज्ज्वले भजरिस्म योग निद्रम अनंत जगदंद सर्व गोप आधार शक्ति अवलंब्य पराम स्व मूर्ति गोविंद मारि पुरुषम तमम भजामि, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति किया है। कांतसाय विष्णु से रोम को बहुत से असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, लेकिन वो ब्रह्मांड सब निश्चेतन अवस्था में थे। इसमें चेतना प्रकट करने के लिए कांतसाय विष्णु ने दूसरा स्वरूप प्रकट किया गर्भोत्साय विष्णु, और गर्भोत्साय विष्णु बन के सब ब्रह्मांड में प्रवेश किया, उसको चेतना में बनाया। और गर्भोत्साय विष्णु के नाभि कमल से प्रथम जीव ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को पता नहीं था मुझे किसने उत्पन्न किया, मैं कहाँ से आया, मेरा क्या कर्तव्य है, ये ब्रह्मा जी नहीं जानते। इसलिए उसने कमल की नाली में बहुत बार आवागमन किया, लेकिन पता नहीं चला। फिर ब्रह्मा जी तपस्या में लगे, कठिन वर्ष कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान ने सबसे सबसे पहले उसका चरण दर्शन करवाए। उसके बाद भगवान ने संपूर्ण स्वरूप प्रकट करके आदेश दिया कि सृष्टि का सर्जन करो, जीवात्मा की उत्पत्ति करो। जो जीव अंतिम भावना लेकर के महाप्रलय के समय भगवान में विलीन हुए थे, वो जीव को फिर से उसकी अंतिम भावना के अनुसार वो योनि में डालना है कि ब्रह्मा का कर्तव्य है। तो ब्रह्मा जी ने पहले सबसे पहले चार सनक सनातन आदि चार मानस पुत्र उत्पन्न किए, उनको आदेश दिया कि गृहस्थाश्रम में पद्धति करो। लेकिन सनक सनातन पहले से वासुदेव परायण थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। हम वासुदेव परायण, हम गृहस्थ जीवन में नहीं जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, बोले कि तुम इसी 5 साल के ही रहोगे, ऐसा श्राप दिया। चार सनत कुमार। इसके बाद ब्रह्मा जी ने क्रोध आने के बाद ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र उत्पन्न हुआ। रुद्र सुशी को निगल जाने की चेष्टा करने लगा, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको रोका, तुम केवल तपस्या करो। फिर ब्रह्मा जी ने 9 ऋषि उत्पन्न किया, अगस्त्य, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा आदि सब 9 ऋषि उत्पन्न किया। फिर पूरी संख्या में प्रजापति नहीं हुई तो उसको उसने फिर ब्रह्मा जी तपस्या में लग गए। तो उनके शरीर से मनु और सतरूपा प्रकट हुए। मनु और सतरूपा के उत्तानपात, प्रियवत, आकृति, प्रकृति, देवहूति, ये 5 हुए। इनसे भी सारा संसार भर गया। इस उसी का सृजन ऐसे हुआ है। ये जो श्लोक में तात्पर्य में ये है, ये जानना जरूरी है। और गरुड़ाचार्य विष्णु के बाद सब जीवात्मा की उत्पत्ति होने के बाद क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में परमात्मा उसको कहते हैं, सब जीव के हृदय में रहने लगे, वास करने लगे। क्यों? क्योंकि जीव का कर्म का साक्षी बनने के लिए। जीवात्मा जो जो कर्म करते हैं, जो इच्छाएं भी करते हैं, जो प्लानिंग भी करते हैं मन में, उसका भी साक्षी रूप में परमात्मा क्षीरोदकशाय विष्णु सब जीवात्मा के साथ। और मृत्यु के बाद भी जो योनि में जाएगा जीवात्मा, वो योनि में परमात्मा भी क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में जाएगा, अपने कर्मों के साक्षी के रूप में। ये श्लोक का भावार्थ है। अभी थोड़ा चैतन्य चरितामृत के बारे में बात करते हैं। चैतन्य चरितामृत के लिए प्रभुदान सरस्वती महाराज ने चैतन्य चंद्रोदय में बहुत अच्छा वर्णन किया है, बहुत अच्छा गुणगान गाया है। कहते हैं प्रभुदान सरस्वती महाराज चैतन्य चंद्रोदय में कि कलयुग के 5,000 साल बीत जाने बाद तक सब अधर्मी बन गए थे, 5 मकान में डूबे हुए थे, मांस मछली मथुरा, मैथुन, मदिरा, मुद्रा, ये 5 मकान में डूबे हुए थे। सब जीव नरक की तरफ गति कर रहे थे, वो सब अधर्म की तरफ अधर्मी थे। धर्म क्या चीज है उनको पता ही नहीं था कलयुग की प्रथम संध्या में। इसलिए लिखते हैं चंद्रोदय में कि वो जीव का उद्धार करने के लिए, साधु संग करवाने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखे हैं कि महाप्रभु जो कोई भी कुंड दिखते थे, सामान्य तालाब भी दिखते थे, उनको श्याम कुंड, नरक कुंड मान लेते थे। कोई पर्वत दिखते थे तो उनको गोवर्धन मान लेते थे, इतने भाव में रहते थे। भगवान चैतन्य को देख के ही दंडवत कर प्रणाम करने से ही कृष्ण भक्ति जागृत हो जाती है, ऐसा भी लिखा है प्रभुदान सरस्वती महाराज ने चैतन्य चैतन्य में। ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने भी वर्णन किया है, जिनको देखने मात्र से दूर से या किसी को दंडवत प्रणाम कर श्रद्धा से तो कृष्ण भक्ति जागृत होती, क्योंकि कृष्ण भक्ति सब जीवात्मा में नित्य है। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबू नहीं, श्रवणारी शुद्ध चित्त करिए उदय। सब जीव में कृष्ण भक्ति सुषुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करने के लिए ऐसा श्रवण की आवश्यकता है। श्रवणारी शुद्ध चित्त करिए उदय। चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य चंद्र में लिखते हैं प्रभु हंस महाराज, जो अपने आजान भाव को ऊपर उठा के अपने चरण कमलों से तांडव जैसे अनुत्य रथ यात्रा में करते हैं, वो चैतन्य देव को मैं साक्षांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। अगर कोई बड़ा ज्ञानी हो, बड़ा तपस्वी हो, सबसे बड़ा धनी हो, सबसे बड़ा होशियार हो, सबसे बड़ा बलवान हो, कोई भी हो, लेकिन जो चैतन्य देव की शरण में नहीं गया, गौरांग महाप्रभु का एक नाम भी उच्चारण नहीं किया, उसका जीवन असंख्य कल्प तक भ्रमित करता रहेगा, असंख्य ब्रह्मांडों में घूमता रहेगा, उसका जीवन व्यर्थ है, धिक्कार है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत सुंदर वर्णन प्रभु राम सचिवाद ने किया है। ये बड़ा योगी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, कोई भी हो, तपस्वी हो, लेकिन चैतन्य देव के शरण में नहीं गया, वो बड़ा कंगाल पशु तुल्य है। कहते हैं कि चैतन्य चंद्रमूर्त में और भी कहते हैं कि श्याम रंग के बालक को श्याम सुंदर मान लेते हैं, और गोवर्धन पर्वत में गोवर्धन सब नदी को गंगा जमुना मान लेते थे, ऐसे भाव में हमेशा जन्माव रहते थे। रूप गोस्वामी महाराज ने उसके लिए भी एक श्लोक का वर्णन किया, नमो महावदान्य आय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्ण आय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौड़ी से नमा। वो महान कृष्ण के अवतार, दयालु अवतार, स्वयं कृष्ण ही है। आप कृष्ण चैतन्य नाम धारण किए है, आप सबको अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट हुए है। महाप्रभु ने यही कार्य किया, पात्र पात्र विचार नहीं, नहीं स्थान स्थान, जे जहाँ पाए तहाँ करे कृष्ण प्रेम दान। चैतन्य महाप्रभु जितने दयालु भगवान व्यक्ति, इतने दयालु कि कोई भी स्थान स्थान का विचार नहीं, पात्र अपात्र का विचार नहीं, गरीब हो, धनी हो, कोई भोगी हो, कोई मुमुक्षु हो, बुभुक्षु हो, कोई तपस, कोई भी पापी तापी दुराचारी कोई भी हो, सबको अपनी भक्ति का दान किया। कैसे दान किया? केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप का कीर्तन करके, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा सबका पाप दूर करवा दिया, सबकी अशुद्धि दूर हो गई, सब शुद्ध हो गए, सबकी आसुरी वृत्ति नाश कर दिया। कोई असुर का नाश जो द्वापर युग में किया था वो नहीं किया, आसुरी वृत्ति का नाश किया और सबको दुर्जन से सज्जन बना दिया, भक्त अभक्त से भक्त बना दिया। और यही कार्य प्रभुपाद जी ने किया, सेम कार्य। अमेरिका में जाके सबसे पहले भगवान के नाम का संकीर्तन किया, संकीर्तन के बाद जैसे जैसे नाम संकीर्तन सुनते गए, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त के मुख से निकला हुआ कीर्तन जिसके कान में घुसा वो सब भक्त बन गए। सुनो नाम स्वग राम कृष्ण पुण्य स्वर्ण कीर्तन हृदयंत्र स्वभद्राणी विद्युन स्वर से टाम। जो अत्यंत व्यभिचारी थे, नशाबाद थे, मांसाहारी थे, वो सब जितनी भी अभद्र वस्तु उसके हृदय में बैठे हुए भगवान तुरंत स्वर से टाम साफ कर दिया। जैसे जैसे भगवान का नाम सुनते जाओगे, इस तरह बहुत सारा वर्णन चैतन्य चंद्र में किया है। प्रभुपाद जी कहते थे कि चैतन्य चरितामृत की फिलोसफी अत्यंत सुपर दुपर है, सुपर फिलोसफी चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, इसकी चर्चा थोड़ी करेंगे। बहुत ही सुपर फिलोसफी है। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते करते दक्षिण भारत में गए, कावेरी नदी के तट पे रामानंद राय मिले, प्रथम मिलन हुआ, भेंट हुआ, सुरधारा हुई सब। दूसरे दिन इष्ट गोष्ठी हुई सब दोनों की, वहां बहुत संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा है। सबसे दूसरे दिन मिले हैं तब पहले महाप्रभु ने प्रश्न किया इस गोष्ठी में, मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य के बारे में महाप्रभु सबको बताना चाहते थे, इसलिए शुरुआत किया कि मनुष्य जीवन जिसने प्राप्त किया है ये दुर्लभ है, उनको कौन सा सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सबसे पहला प्रश्न किया। रावण राय ने सही जवाब दिया, मनुष्य को बचपन से कौमार आचार्य पाग्नो धर्मान भागवदानी है दुर्लभम मानुषम तर्वि अध्रुवम अर्थदम। रावण राय ने कहा कि कृष्ण भावना का ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है और वो ही प्राप्त करना चाहिए, और कोई ज्ञान हिस्ट्री या ज्योग्राफी का कोई जरूर नहीं है। ये बात सही उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न किया, सबसे ज्यादा सुखी मनुष्य कौन है? रावण राय ने कहा कि जो कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ है, शुद्ध भक्ति में डूबा है, भुक्ति मुक्ति शुद्धि सिद्धि सुख सकली कामी अशांत कृष्ण भक्त निष्कामत एवं शांत, जो कृष्ण भक्ति में है वो सबसे ज्यादा सुखी है। सबसे ज्यादा दुखी कौन है? कहते हैं कि जिसको शुद्ध भक्त का वियोग हो गया हो, उसे बिछड़ गए हो या कोई सेवा से वंचित रह गया हो, वो सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति है। भगवान की कोई सेवा नहीं करे कोई जीव और कोई भक्तों का संग नहीं करे, वो सबसे ज्यादा दुखी रहता है। हम लोग सब अनुभव करते हैं, भक्ति करने के बाद हम लोग जब कोई भक्त का संग छूट जाएगा या कोई सेवा छूट जाएगी तो बहुत दुखी हो जाएंगे, सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति हो। मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी चीज क्या है? साधु संग, साधु संग, साधु संग, सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, महाप्रभु ने कहा है केवल साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्म त्यो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? साधु संग से। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम कहाँ से? कृष्ण प्रेम जन्म पुनः मुख्य अंग, इसलिए साधु संग की बहुत आवश्यकता है। अगर मनुष्य जीवन प्राप्त किया है और साधु संग नहीं किया, कोई भक्त का संग नहीं किया, कुछ कृष्ण के बारे में श्रवण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। ब्रह्मा के कल्प तक परिभ्रमण करने वाला है, अनेक ब्रह्मांडों में अनेक योनियों में घूमने वाला है, पशु तुल्य है, ऐसा कहा गया है। इसलिए महाप्रभु कहना चाहते थे कि अभी पूछे मनुष्य का जीवन में उसका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। महाप्रभु ने प्रश्न किया रामान राय को, रामान राय ने कहा कि प्रभु आप सब जानते हैं आप स्वयं भगवान हैं, लेकिन आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं, आप श्रोता बन के सुनना चाहते हो तो मैं आपके दिया हुआ ज्ञान से मैं कह सकता हूँ मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। रामान राय ने कहा स्वे से कर्मण भीरत सन सिद्धि लभते नर, स्वकर्म चतम भरचम सिद्धि विन्दति मानव। अर्थात रावण राय ने कहा वर्णाश्रम धर्म का पालन करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य, ऐसा कह दिया। महाप्रभु ने कहा ये तो वर्णाश्रम धर्म का पालन मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य कैसे हो सकता है? वर्णाश्रम धर्म का पालन अगर 100 जन्म तक कोई शुद्धता पूर्वक करे तो बहुत बहुत इंद्र बनेगा, स्वर्ग लोक में जाए, लेकिन तेते भुक्त स्वर्ग लोक विशाल क्षीण पूरे मृत्युलोक विसंति, उसको फिर से मृत्युलोक में आना पड़ेगा। इसलिए कहा ये हो बाह्य आगे कहा हार, ये बाह्य है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ये मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। फिर दूसरा कहा रावण राय ने यद करो यद अस्नासि यद जोषि दर्यासि यद तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात हम जो करते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो यज्ञ होम होम करते हैं, जो दान करते हो, जो तपस्या करते हो, सब भगवान कृष्ण को अर्पण करो। ये गीता का श्लोक रामन राय ने बताया, लेकिन महाप्रभु ने उसको भी निग्लेक्ट कर दिया, कहा कि इनसे तो केवल कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त होगी, तुम कर्म बंधन से छूट जाओगे। ये अपना मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये तो सब शुरू का नवोदित भक्त होता है उनके लिए अच्छी बात है। ये कोई बात निग्लेक्ट कर मतलब हमको पालन करना है, ऐसा नहीं कहा कि हमको पालन नहीं करना है। शुरू शुरू में सब पालन करना है, गीता का, भावार्थ का, तात्पर्य का, श्लोक का, भगवान की वाणी का अनुकरण करना है, उसका पालन करना है। इसलिए महाप्रभु ने कहा हो बाह्य आगे कर। तो महाराम ने तीसरा जवाब दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम स्वरूपापि विमोक्षयिष्यामि मा शुच। महाप्रभु ने कहा सबसे भगवान की शरण में जाना है, अच्छी बात है, शरण में जाना तो चाहिए, लेकिन किस चीज की प्राप्ति करनी चाहिए? भगवान ने गीता में कहा है हम तुम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब पाप का नाश करने हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य थोड़ी है। पाप तो केवल एक नाम, कृष्ण का नाम शुद्ध भाव से लेंगे ना तो नामाभास से भी वो दूर हो जाएगा, सब पापों का क्षय हो जाएगा। एक नामाभास से तुम्हारा पाप दोष जावे, आर नाम लेते कृष्ण चरण पावे। एक नामाभास, नामाभास का मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण को सब गोविंद का नाम, अगर आपका पुत्र का नाम गोविंद है, आप गोविंद बोलोगे तो ही भगवान अपना नाम मान लेते हैं। और यमदूत यमराज के दरबार में उसकी गिनती भी हो रही है, जैसे अजामिल की कथा में हमने सुना पढ़ा, नारायण नारायण हजारों बार बोला, उसकी गिनती हो रही थी। भगवान को नहीं पुकारता था, अपने पुत्र को पुकारता था। लेकिन पाप का क्षय करना हमारा मुस्लिम का अंतिम लक्ष्य नहीं है, महाप्रभु ने कहा। एक नामाभास है, एक नामाभास है तो सब नानी जन्मों का पाप क्षय हो जाएगा, इसकी चिंता मत करो। ये हो बाह्य आगे कहा। तो चौथा उपाय बताया, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समस्त भूत सुमर भक्ति लभते पराम। महाप्रभु ने कहा तो ज्ञान मिश्रा भक्ति है, ज्ञान मिश्रा भक्ति है। ब्रह्म भूत में प्रवेश करना, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना मनुष्य का अंतिम लक्ष्य नहीं। भक्त कभी सायुज्य मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते ही नहीं, सेवा से वंचित रहकर रहना भक्त के लिए असंभव है। इस ज्ञान मिश्र भक्ति आगे कुछ कहो आर। तो बताया स्थान स्थित सूर्यग्रम तनुवांक मनोभी। महाप्रभु ने कहा ये ठीक है, ये हो है। ये ठीक क्यों कहा? क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में सुनना, उनके उच्चारण करना, नामों का उच्चारण करना, कीर्तन करना, उनके विग्रह की सेवा करना, स्थानीय स्तुतिग्रम तनु वाक मनो भी, तन से अपनी सेवा करो भगवान के विग्रह की, श्रवण करो, कीर्तन करो मुख से और श्रवण करो, ये हो है। महाप्रभु कहे ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन अंतिम लक्ष्य के बारे में मुझे बताओ। तभी रामायण राय ने कहा कि दास्य प्रेम सर्वसाध्य हो, मनुष्य को मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान का दास बने रहना। महाप्रभु के ये तो दास तत्व तुम्हारा पहले से है ही, जीव स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, ये हो है। किछु आगे कह आर, दास दास्य भाव सर्वसाध्य सार नहीं, ये तो है ऑलरेडी। फिर कहा सख्य भाव सर्वसाध्य सार, महाप्रभु का ये हो उत्तम, उत्तम है सख्य भाव में रहना, क्योंकि सख्य भाव दास्य भाव में केवल निष्ठा और सेवा दो ही चीज का गुण आता है, सख्य भाव में निष्ठा सेवा और निसंकोच भाव होता है। कैसे? जैसे हमने भागवत में पढ़ा भगवान के बाल सखा कभी उनके साथ खेलते हैं, कभी उनकी सेवा भी करते हैं श्रद्धापूर्वक, और कभी उनके कंधे पे भी चढ़ जाते हैं। दास्य भाव में, असख्य भाव में, तो ये सख्य भाव में रहना है उत्तम है, लेकिन अपना अंतिम गोल क्या है, व्हाट इज द लास्ट गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, अंतिम लक्ष्य मनुष्य का क्या होना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए और कैसे प्राप्त करना चाहिए ये बताओ। फिर आगे कहा कि वात्सल्य भाव सर्वसाध्य सा है, ये भी निग्लेक्ट कर दिया वहां पर। वात्सल्य भाव में निष्ठा है, सेवा भी है, जैसे लड्डू गोपाल हम सब लोग रखते हैं उसमें अपनी श्रद्धा से सेवा भी करते हैं, निष्ठा है, सेवा है, निसंकोच भाव भी है और लालन पालन का भाव है, ये चार गुण है वात्सल्य भाव में। महाप्रभु ने हो उत्तम, लेकिन और किसु आगे कहा, क्योंकि महाप्रभु जानना चाहते थे कि भगवत प्रेम की प्राप्ति में उसे जीवन में करना है, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए रावण राय अभी समझ गए, अभी समझ के बोले आप क्या चाहते हो, मैं समझ गया, कांता भाव सर्वसाध्य सार, ये जो कहा रावण राय ने, तो महाप्रभु अत्यंत खुश हुए। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, ये सब प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी, महाप्रभु ने पूछा, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य प्रेम प्राप्त करना है तो कैसे होगी। तो प्रेम प्राप्त करने के लिए सनातन गोस्वामी महाराज को बताया थे भक्ति के सिद्धांत, उसमें आता है आदो श्रद्धा तो साधु संग अथवा भजन क्रिया तो अनर्थ निवृत्ति, रुचिष्ठता निष्ठास्थता रुचिष्ठता आसक्तिष्ठता भावस्तथा प्रेम, ये नौ लक्षण बताए। हम लोग सब श्रद्धा में है, आरु श्रद्धा हमारे में है इसलिए भक्त बने हैं। साधु संग रूपा जी का संग भी मिला, साधु संग भी मिला है, भजन क्रिया भी चल रहा है, हरे कृष्ण हमारे जब भी कर रहे हैं, लेकिन अनर्थ निवृत्ति हमारी जाती नहीं। अनर्थ निवृत्ति चार प्रकार के अनर्थ होते हैं, माधुर्य कादंबरी में विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने लिखा है, चार प्रकार का अनर्थ बताया, सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ। सुकृत जात अनर्थ क्या है, देखो हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, 16 माला 32 माला 64 माला भी करते हैं, लेकिन अनर्थ से बचना चाहिए, तो हमें ये मनुष्य के जीवन के अंत समय तक गोलोक धाम की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अनर्थ पे हम रुके हुए हैं। सुकृत जात अनर्थ किसको कहते हैं, कि भजन के साथ माला जप के साथ कीर्तन के साथ साथ हम भोग की इच्छा करें, कोई भी प्रकार की भोग की इच्छा करेंगे तो सुकृत जात अनर्थ है, भोग की इच्छा, भोग का त्याग करना है। मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं, आहार निद्रा भय मैथुन ये भोग बताया गया है, तो प्राणी भी करते हैं। मनुष्य जीवन इतने अनादि जन्मों से भटक रहे हैं, कितने योनि प्राप्त हुआ है, एक बार इस जन्म में मनुष्य जीवन मिला है तो उसका पूरा पूरा फायदा उठा के सदुपयोग करके हमको सब भोगों से निवृत्त होकर के आहार निद्रा मैथुन छोड़ को, एक जन्म छोड़ोगे तो क्या तकलीफ पड़ जाए, एक जन्म अगर छोड़ दिया तो 84 लाख योनि का भ्रमण रुक जाएगा। इस कोई प्रकार की भोग की वृत्ति नहीं भजन करते करते, ये सुकृत जात अनर्थ। दूसरा बताया दुष्कृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ हम करते हैं भजन भी, भजन के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन के साथ भी दुष्कृत जात अनर्थ क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या राग द्वेष आसक्ति, कौन से गुण दुर्गुण से बचोगे, कौन से दुर्गुण से हम बच सकते हैं, कामना से, क्रोध से, लोभ से, राग से, द्वेष से। एक तो भक्त एक दूसरा भक्त की निंदा भी करने लगता है कभी कभी, राग द्वेष सकता है, आसक्ति से कभी नहीं बच सकते, अपने शरीर की आसक्ति, फैमिली मेंबर्स की आसक्ति, धन संपत्ति की आसक्ति, शिक्षण की आसक्ति, और पुण्य कर्म करने की आसक्ति, पांच प्रकार की आसक्ति बताई। वो आसक्ति में से छूटना चाहिए, कोई आसक्ति कोई मोह नहीं रखना चाहिए। अपना शरीर का मोह का भी त्याग करना है, अपने फैमिली मेंबर्स का भी त्याग करना है। संसार में रहना है लेकिन आसक्ति मोह में नहीं रहना। इष्टम दत्तम तपो जप्तम यत आत्मने प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान यत परस्मै निवेदनम। क्या कहते हैं भगवान उद्धव जी को, कहते हैं ग्यारहवा केंद्र में, इष्टम दत्तम तपो, हमारा जो प्रिय चीज है, जितना भी प्रिय चीज है, इवन दारान सुतान गृहान प्राणान, मतलब दारान मतलब श्री पुत्र, सुदान गृहण अपना घर परिवार धन संपत्ति, ये सब भगवान को अर्पण कर दो, भगवान की सेवा में युक्त लगा कर दो। इसलिए ये सबका आसक्ति का त्याग करना चाहिए और साथ साथ भजन करेंगे तो जल्दी उत्तम फल की प्राप्ति होगी और भगवत धाम ये जन्म के अंत समय में जा सकते हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल चीज है, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार ईर्ष्या द्वेष राग आसक्ति छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सब नाम के हरि नाम के द्वारा ही छूट जाएगी। हरि नाम प्रभु कृपा करके ही ये सब अनर्थ का नाश करेंगे। इसलिए जितना हो सके उतना खाएते सुईते यथा तथा नाम लेते देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। सब समय आते जाते उठते बैठते खाते सोते भगवान का नाम जप, सबको जो मिले उसको भी भगवान का नाम हरे कृष्ण बोलो। एक बार भी कोई हरे कृष्ण बोलेगा उसका नाम का बीज मिल जाता है, वो बीज कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए ये सब दुर्गुण का नाश करने के लिए की भोजन है की सहन है की वह जागरण है, हरि से चिंत कृष्ण बोलो वदन है, सब समय भगवान कृष्ण का नाम लेना है, एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं करना है, तभी भगवत धाम जा सकते। नहीं तो बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो नहीं पाए कृष्ण बने प्रेम धन। भगवान का प्रेम प्राप्त करना बहु जन्म लग जाए श्रवण कीर्तन करते करते, अनर्थ नहीं छोड़ोगे तो डिस्कृत अनर्थ। उसके बाद तीसरा अपराध बताया अपराध जातनर्थ। अपराध जनर्थ क्या है, जीव अपराध नाम अपराध जो हम लोग बोलते हैं दस नाम अपराध, वैष्णव अपराध और सेवा अपराध, भगवान विग्रह की सेवा में जो अपराध होता है उसे बचना चाहिए, नाम अपराध से खास बचना चाहिए, वैष्णव अपराध से तो खास बचना चाहिए। वैष्णव अपराध करेंगे तो हमारा पूरा भक्ति लता का जो छोड़ है वो नीचे आ जाएगा, जितनी प्रगति किया है वो सब डाउन हो जाएगी। इसलिए नाम जप करते करते ये अपराध ज्यादा अनर्थ नहीं। वैष्णव नाम अपराध हम कभी हमारा नाम करते करते भी दसवां अपराध तो हो ही जाता है, भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास न हो इसकी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना, हमारी विषय आसक्ति नहीं छूटती, विषयों की आसक्ति नहीं छूटती। और पहला अपराध भी कभी कभी हो जाता है भगवान के नाम के प्रचार करने वाले महाभागवत की निंदा हम बोलेंगे, किसी का दुर्गुण कर चर्चा करेंगे वो निंदा हो जाता है, ये सूक्ष्म रूप से हमारा भक्ति रुक जाती है आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए हम सब अनर्थ निवृत्ति में रुके हुए। चौथा भक्ति करते करते भगवान का नाम जब लेते लेते पद की इच्छा रखोगे, प्रतिष्ठा की इच्छा रखोगे, पैसे की इच्छा रखोगे, मान की इच्छा रखोगे, मैं बड़ा श्रोता हूँ मैं बड़ा वक्ता हूँ ऐसा अभी अहंकार रहोगे भगवान की भक्ति करते करते नाम जप करते करते, तो ये भक्ति जात अनर्थ है। ये चार प्रकार का अनर्थ को हमें दूर रहना चाहिए, नाश करना चाहिए, बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, अनर्थ से बचना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो उत्तम नाम फल, नाम का फल तो मिलेगा ही, कैसे भी करके नाम लो, उत्तम फल मध्यम फल कनिष्ठ फल, लेकिन हम कनिष्ठ फल अनर्थ के साथ करेंगे तो कनिष्ठ फल मिलता जाएगा, बहु जन्म लग जाएगा, मनुष्य जन्म तो मिलेगा नाम जप करने वाले को, दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन कनिष्फल हम इतनी प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो क्यों हम सब अनर्थ का नाश करके यही जन्म के अन्य समय में भगवत धाम नहीं जाए, ये सोचना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मुझे यही जन्म के अंत में भगवत वैकुंठ धाम जाना ही है, बार बार 84 लाख जीवन में नहीं घूमना है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भी सब दुख खा ले, वहां शाश्वतम बताया गया है, दुखों से भरा पड़ा है। प्रभुपाद जी की कृपा से, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको महाप्रभु का अवतार इसलिए हुआ है, भगवान का संकीर्तन आंदोलन करके सब जीव को शुद्ध कर देना, इसलिए हमें ये सब अनर्थ का त्याग करना चाहिए, तभी हमको उत्तम फल की प्राप्ति हो जाएगी और अन्य समय में भगवत धाम जा सकते हैं। और रामानंद राय को ये भक्ति तत्व का उपदेश दिया, उसके बाद रूप गोस्वामी महाराज को शुद्ध भक्ति का उपदेश दिया, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का, कृष्ण भक्ति का दो भाग बताया, एक शुद्ध भक्ति और एक मिश्रा भक्ति। मिश्रा भक्ति क्या है? सतोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति, योग मिश्रा भक्ति, ये सब मिश्रा भक्ति हो जाए। हम लोग सब मिश्रा भक्ति में है। सतोगुणी किसको कहते हैं? नाम जप कर भगवान की भक्ति भी करते हो, फिर साथ में पुण्य कर्म भी करोगे तो सतोगुणी भक्ति होगी, मिश्रा भक्ति में जाएगा। रजोगुणी भक्ति क्या है? भक्ति के बदले में कुछ कामना रखोगे। आजकल भक्ति के बदले में पैसा लक्ष्मी बहुत चाहिए, कोई भी प्रकार की कामना भक्ति के बदले में करोगे वो रजोगुणी भक्ति, मिश्रा भक्ति जाएगी। तमोगुणी भक्ति क्या है? जो भक्ति करते करते हम अहंकार करेंगे, ईर्ष्या राग द्वेष करेंगे, मोह रखेंगे, तो ये सब तमोगुणी भक्ति का लक्षण है, मिश्रा भक्ति में जाएगा। और शुद्ध भक्ति का महाप्रभु ने रूप गोस्वामी महाराज को तीन भाग कर बताया, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये सब भक्ति रसम सिंधु में है, आप लोग सब जानते भी होंगे। शुद्ध भक्ति का तीन भाग किया, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति का दो भाग किया, वैधी भक्ति और रागानुगा भक्ति, महाप्रभु ने बताया। वैधी भक्ति का भी तीन भाग किया, आभास भक्ति, प्रतिबिंब भक्ति, छाया भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति। ये सब भक्ति का प्रकार बताया। उसके बाद रागानुगा भक्ति, कामानुगा संबंध अनुगा। उसके बाद भाव भक्ति आएगा, भाव भक्ति का 9 लक्षण बताए महाप्रभु ने, शांति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बन समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तत् हरिगुण व्याख्याने, प्रीति तत् वशिष्ठ स्थले। ये 9 लक्षण बताया भाव भक्ति के। कोई कहे कि मैं बहुत भाव में हूँ, भाव में रहता हूँ, भजन करते करते भाव में रहता हूँ, वो भाव में आ जाता हूँ, ये व्यर्थ है। ये 9 लक्षण सुनो पहले, भाव भक्ति के क्या है। शांति का मतलब है क्षमा करना, किसी को भी अपराध हो गया हो तो क्षमा कर, सहन कर लेना, कोई भी चीज का सहन, देवी द्वारा, देवी कृपा से आपको जो मिला है क्षमा करना, और सहनशीलता का गुण तो सब भक्तों में होना ही चाहिए। शांति, अव्यर्थ कालत्व, मतलब एक क्षण भी भगवान के नाम, नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में चिंतन के बिना नहीं बिताना चाहिए, एक क्षण भी नहीं बिताना चाहिए, इसको अव्यर्थ कालत्व कहते हैं। विरक्ति मतलब वैराग्य, कोई प्रकार की आसक्ति, कोई प्रकार का मोह नहीं, वैराग्य जीवन जीना। आशावन, भगवान को ये जन्म मनुष्य के अंत समय जीवन, जीवन के अंत समय के बाद भगवत धाम में जाऊंगा, ऐसी आशा, प्रबल आशा व्यक्त रखना चाहिए, आशावन। समुत्कंठा, कोई भी प्रकार की भगवान की सेवा में उत्साह, उत्कंठा रखनी चाहिए, समुत्कंठा। नाम गाने सदा रुचि, हमेशा भगवान का नाम गान कीर्तन करने में रुचि रखना चाहिए। आसक्ति तो धड़ी गुण व्याख्यान है, इसलिए महाप्रभु ने कहा, तारे नागो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा गुरु हुए तारो ए देश, जिसको भी मिलते हो आप उसको हरे कृष्ण बोलो, खाली हरे कृष्ण बोलवाओ, उसका कल्याण हो जाएगा। आसक्ति तो हरि गुण व्याख्यान है, हरि गुण का आसक्ति रखनी चाहिए गुणगान गाने में। और प्रीति तो वसेरी स्थले, भगवान मंदिर में जहाँ नारायण विराजमान है उसमें वास करो या धाम में वास करो, उसको कहते हैं प्रीति तो वसेरी स्थले। ये जब होगा तब नौ लक्षण पार करेंगे भाव भक्ति का, उसके बाद प्रेम भक्ति आएगी। प्रेम भक्ति क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा, आत्मेंद्रिय प्रीति वासना, तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, धरे प्रेम नाम, ये प्रेम भक्ति। अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए कुछ कार्य नहीं करना, केवल कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य करना, उसको कहते हैं प्रेम भक्ति। राधा रानी प्रेम भक्ति का प्रतीक है। राधा रानी क्या कहती थी? असनन सुनवन जिग्रन पश्यन कच्छन पलपन निमिषन उन्मिषन, जो भी कार्य करती थी सब भगवान की संतुष्टि के लिए, अपने इंद्रिय के लिए कोई कुछ कार्य नहीं करती। भगवान की जितनी अंतरंग सखी है, राधा रानी शिरोमणि है, वो सब यही कार्य, कैसे भगवान को संतुष्ट करे। प्रेम भक्ति प्राप्त करना ऐसे तो बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अगर दृढ़ निश्चय करें हम कि हमारी कोई इंद्रिय को हमको संतुष्ट नहीं करना, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, कोई प्रकार की इंद्रियों की संतुष्टि नहीं, केवल भगवान कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के बारे में सोचना, कैसे भगवान को प्रसन्न करें, किस पे भगवान को, कौन सा कार्य करने से भगवान प्रसन्न होंगे, ये कार्य करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ये प्रेम भक्ति का लक्षण बताया। और कहा शुद्ध प्रेम भक्ति का लक्षण, शुद्ध भक्ति का लक्षण छह बताए, क्लेशग्नि सुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सान्द्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षिणी चसा। सबसे पहले सुभदा, ये अगर प्रेम भक्ति में अगर कोई है, शुद्ध भक्त अगर कोई है, तो छह लक्षण उसमें दिखाई देंगे। सुविधा, सुविधा का मतलब है जगत प्रेरण, जगत अनुराग, त्रिविध सुख की प्राप्ति और सब सद्गुणों की प्राप्ति, ये सुविधा है। देवता जैसा गुण प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म सुख ऐश्वर्य सुख वैश्विक सुख तीनों तीन अपने आप मिल जाता है, पूरा जगत उनको अनुराग करते हैं, पूरा जगत तृप्ति लाभ करता है, जगत के प्रत्येक जीव जैसे प्रभुपाद जी, सब लोग उनको सबके प्रिय है, जो भक्त नहीं उसको वो भी गुणगान करते हैं, ऐसे जगत होना सुविधा। फिर क्लेशग्नि, क्लेशग्नि दूसरा लक्षण, क्लेशग्नि क्या मतलब है? क्लेशग्नि तीन प्रकार है, क्लेश तीन प्रकार का बताया, पाप, पाप का मूल है वासना, वासना का मूल है अविद्या अज्ञानता। पाप भी तीन प्रकार के, क्रियमाण कर्म पाप, प्रारब्ध कर्म पाप और संचित कर्म पाप। क्रियमाण कर्म पाप हम वर्तमान जीवन में जो करते हैं, जो भी कार्य कर्म करते हैं उसका फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध फल हम अभी जन्म में वर्तमान जीवन में भोग रहे हैं जो पिछले जन्म में किया है, और संचित कर्म का फल कभी भी कोई भी योनि में कोई भी जन्म में भोगना पड़ेगा, ये भगवान के हाथ में है। क्लेशग्नि सुविधा, क्लेशग्नि मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष को तुच्छ समझने वाले सब भक्त। देखो आप पांच प्रकार की मुक्ति बताई है, सायुज्य सामीप्य सारूप्य शास्त्री सालोक्य, पांचों प्रकार की मुक्ति को दासी बना के रखते हैं शुद्ध भक्त, पांचों मुक्ति की, पांच मुक्ति उनको पास पीछे पीछे घूमती है लेकिन भक्त ग्रहण नहीं करते। मुक्ति क्या कहती है शुद्ध भक्त को? सायुज्य, भगवान के ब्रह्म में विलीन हो जाओ, वो तो कभी नहीं मांगते। सामीप्य भगवान के पास रहना ये भी नहीं चाहिए, भगवान के लोक में वास करना सालोक्य ये भी नहीं चाहिए, सारूप्य भगवान जैसा चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त करें वो भी नहीं चाहिए, शास्त्री भगवान जितना ऐश्वर्य प्राप्त करना ये भी नहीं चाहिए। पांच प्रकार की मुक्ति का भी शुद्ध भक्त त्याग करता है तो क्या चाहता है, मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवता भक्ति है तो कि त्वयि, ये चाहता है प्रत्येक जन्म में भगवान की सेवा मिले, शुद्ध भक्ति अहेतु की हेतु बिना, ये प्रेम भक्ति शुद्ध भक्त का लक्षण बताया, क्लेश सुग्रह मोक्ष सुग्रह गुट सुदुर्लभ। और कृष्ण भक्ति प्रेम भक्ति बहुत दुर्लभ है, भगवान अगर देना चाहते तो भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर जिसको मिल जाती है उनको भगवान का दास बन जाता है, जाना पड़ता है कुत दास बन जाना पड़ता है, मतलब दास का मतलब क्या है, वो जो इच्छा करे उसकी इच्छा की पूर्ति करना पड़ता है भगवान को। सुदुर्लभा बहुत दुर्लभ है कृष्ण भक्ति प्राप्त, ने भाग्यवान है प्रभुपाद की कृपा के द्वारा हमको ये भक्ति मिली, नवधा भक्ति मिल गई है, फिर हम गंभीरतापूर्वक उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, उसका पालन कर लेना चाहिए, ये भक्ति बड़ी दुर्लभ है। कृष्ण यदि छूते भक्त भुक्ति मुक्ति दिया, कभी प्रेम भक्ति ना दे राखन लुकाया, महाप्रभु ने कहा है, भगवान सबको भोग और मोक्ष तरत दे देते इमीडिएटली, लेकिन कृष्ण भक्ति ना दे राखन लुकाया, लटका के रखता है। कृष्ण भक्ति कोई मांगने जाए तो मिलेगा नहीं, उसका पालन आचरण करना पड़ेगा, इसलिए सुदुर्लभा सानंद विशेष आत्मा। सानंद विशेष आत्मा क्या अर्थ है कि इतना शुद्ध भक्तों को ब्रह्मानंद से भी अधिक आनंद की प्राप्ति होती है उसको प्रेमानंद कहते हैं। ब्रह्मानंद की तुलना तो गाय के पैर के एक छाप के नीचे पड़ा हुआ जल के जितना ब्रह्मानंद होता है, गोस्पट तुल्य माना जाता है ब्रह्मानंद, इससे ऊपर प्रेमानंद की प्राप्ति होती है। अपने मगन भगवान के इष्ट देव में हमेशा मग्न रहते सानंद विशेष आत्मा। और कृष्णाकर्षिणी चैसा, ये शुद्ध भक्ति जिसने प्राप्त किया है उसका भगवान को भी आकर्षित करती है, भगवान उनके सेवक बन जाते हैं। कृष्णाकर्षिणी चौसा, कैसे कृष्णाकर्षिणी, कृष्ण भगवान को आकर्षित करने वाले कैसे कहा गया, जैसे अर्जुन के सारथी बने सेवक बने, शुद्ध भक्तों की सेवा करने सारथी बने, और प्रहलाद महाराज ने इच्छा किया कि मेरे भगवान इस खंभे में, तो खंभे से भगवान को प्रकाश होना पड़ा, शुद्ध भक्त की इच्छा जो भी उसकी पूर्ति करते हैं। कृष्णाकर्षिणी भगवान का आशीर्वाद करने से वाले, मदन मोहन, भगवान मदन मोहन है लेकिन राधा रानी मदन मोहिनी है, भगवान सबको आकर्षित करते हैं लेकिन राधा रानी मदन मोहिनी, भगवान की सब भी आकर्षित करने वाली, इसको कहते हैं कृष्णाकर्षिणी चौसा, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। समय हो गया है इसलिए यहाँ समाप्त करूँगा, हरिदास ठाकुर को भगवान का नाम का महत्व बताया था रह गया, बहुत अच्छा संवाद था, फिर कभी बताएंगे। श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य चरणों की जय, गो भगवानंदी। समय हो गया।